पृष्ठ संख्या 95, कविता संख्या 11, शहर में सूर्यास्त। कविता, अधजले शब्दों के ढेर में तुम क्या तलाशते रहे हो? तुम्हारी आत्मीयता जले हुए कागज़ की वह तस्वीर है जो छूते ही राख हो जाएगी। इस देश के बातूनी दिमाग में किसी विदेशी भाषा का सूर्यास्त फिर सुलगने लगा है। लाल हरी झंडियाँ जो कल तक शिखरों पर फहरा रही थी, वक्त की निचली सतहों में उतर कर स्याह हो गई हैं, और चरित्रहीनता मंत्रियों की कुर्सी में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारी तरह मुझे भी अफसोस है। मैंने भी इस देश को एक जवान आदमी की रंगीन इच्छाओं की पूरी गहराइयों से प्यार किया था। व्याख्या, जिस प्रकार अधजली वस्तु अपनी उपयोगिता और स्वरूप खो बैठती है, उसी प्रकार एक से ही शब्दों के बार बार प्रयोग से उनकी जीवंतता अधजली सी हो जाती है। इसी वस्तु सत्य को अपनी रचना का केंद्रीय भाव बनाते हुए कवि धूमिल रचनाकार पाठक से प्रश्न मुद्रा में पूछता है कि अधजले शब्दों के ढेर में टटोलते हुए तुम किस वस्तु तत्व की तलाश कर रहे हो? शब्दों के वाक जाल में सत्य की तलाश कठिन है। तुम जिस शोधी आत्मीयता के वस्तु तत्व की तलाश कर रहे हो, वह आत्मीयता भी अपने आप में एक जले हुए कागज़ की वह तस्वीर मात्र है जो छूते ही राख के कणों में बदल जाएगी। अपने लोक बोध को अनुभव के रूप में रेखांकित करते हुए धूमिल का कहना है कि इस देश के बातूनी दिमाग अर्थात देश के बातें बनाने वाले लोगों में विदेशी भाषा का सूर्यास्त अर्थात विदेशी भाषा के वर्चस्व की प्रभावहीनता की बातें फिर से सुलगने लगी हैं। जिन लाल हरी झंडियों को हाथ में उठा उठा कर आज़ादी के कर्णधारों ने शिखरों की ऊंचाइयों पर फहराया था, अर्थात स्वदेश और स्वदेशीपन की कल्पना करके गुलामी को दूर भगाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के नेतृत्व के अपने लक्ष्य को बुलंदी पर रखा था, उन्हीं झंडियों को अब अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने ही देश के शासकों ने समय की सबसे निचली सतहों पर लाकर पटक दिया है, जहाँ वे लाल और हरी झंडियाँ अब काली पड़ गई हैं। जिस चरित्र के बल पर देश ने आज़ादी प्राप्त की थी, वही अब चरित्रहीनता में बदल गया है, और वह चरित्रहीनता अब मंत्रियों की कुर्सी का रूप धारण करके प्रजातंत्रीय शासन में सब जगह आसीन है। संबोधित व्यक्तित्व की वर्तमान शासन के आस्थाहीनता को व्यंजित करते हुए रचनाकार कहता है कि जिस प्रकार तुम अपनी पूरी आस्था से प्यार करते थे, उसी प्रकार मैंने भी एक युवा मनुष्य की तरह पूरी रंगीन कामनाओं के साथ हृदय की पूरी गहराइयों से प्यार किया है, किंतु अब देश की वर्तमान हालत को देखकर उसके कर्णधारों की चरित्रहीनता को समझते हुए मुझे पृष्ठ संख्या 96 अपने पहले किए गए प्यार भाव पर ही अफसोस होने लगता है कि क्या मैंने अपने देश की इसी वर्तमान दुर्गति के लिए प्यार किया था। कविता, मगर अब अतीत में अपना चेहरा देखने के लिए शीशे की धूल झाड़ना बेकार है। उसकी पॉलिश उतर चुकी है और अब उसके दोनों ओर सिर्फ दीवार है जिसके पीछे राजनीतिक अफवाहों का शरदकालीन आकाश नगर के लफंगों में आखिरी नाटक की मनपसंद भूमिकाएं बांट रहा है। रिहर्सल के हवाबंद कमरों में खिड़कियों के गंदे मुहावरे गूंज रहे हैं। शाम हो रही है, दिन की मुंडेर पर अंधकार में आधा झुका सूरज अपनी जांघों पर रोशनी की गुलेल तोड़ रहा है। रंगों की बदचलन इच्छाएं शहर का सबसे अच्छा शोकेस तैयार कर रही हैं। उन्होंने जनता और जराय पेशा औरतों के बीच की सरल रेखा को काटकर स्वस्तिक चिन्ह बना लिया है और हवा में एक चमकदार गोल शब्द फेंक दिया है, जनतंत्र, जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। व्याख्या, देश की वर्तमान विडंबनापूर्ण स्थिति पर पश्चाताप करते हुए रचनाकार अपने बिसुरने को व्यर्थ मानते हुए कहता है कि अब जबकि देश की ऐसी दुर्गति हो गई है अथवा हो रही है, तब अपने किए हुए प्रेम भाव पर ना पछताने की सलाह देता है। उसकी मान्यता है कि समय हाथ से निकल जाने पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। अब अतीत में अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण में शीशे की धूल झाड़ना बेकार है। उस अतीत रूप शीशे की धूल झाड़ने में अब क्या लाभ, जो वर्तमान में आते आते अपनी सारी चमक सारी पॉलिश को खो चुका है। अब अतीत का दर्पण दर्पण न रहकर एक दीवार मात्र रह गया है जिसमें अपना कोई बिंब दिखाई नहीं देता। अब तो अतीत के उस दर्पण रूप दीवार के पीछे दिखाई देने वाला शरदकालीन आकाश भी शहर के गुंडों लफंगों को राजनीतिक अफवाहों के आखिरी नाटक की मनपसंद भूमिकाएं, जिसको जो किरदार चाहिए वही खुलेआम बांट रहा है। अर्थात अफवाहों की राजनीति अपनी मनचाही भूमिका निभा रही है। सूर्यास्त के बाद अंधेरे में ऐसे ही नाटक खेले जाते रहेंगे। राजनीति के नाटक की भूमिकाएं जिन लोगों में बांटी जा रही हैं, वह उनका रिहर्सल हवाबंद कमरों में कर रहे हैं। अर्थात जहां दम घुटने की संभावना है, वहीं लफंगे लोग राजनीति की कुर्सी से चिपके हुए रहकर अपने किरदार का अभ्यास कर रहे हैं। उनकी ऐसी काली करतूत की गूंज बंद कमरों की खिड़कियों से गूंज रही है। उधर देखो, संध्या हो रही है। शरदकालीन आकाश दीवार के उस पार अंधेरे में डूबने वाला है। अंधेरे का नाटक शुरू होने ही वाला है। दिन मुंडेर की ऊंचाई पर पहुंचकर शाम होने की घोषणा करने ही वाला है। प्रकाश का प्रतीक सूरज अंधकार में आधा झुक चुका है। अंधेरे में झुके हुए सूरज की जांघों पर किरणों को, जो रोशनी की गुलेल रूप में देखी जा सकती है, स्वयं सूरज तोड़ता नजर आ रहा है। अर्थात प्रकाश की आखिरी किरणें भी समाप्त होने वाली हैं। अब रंग भरी उमंगे जो अंधेरे में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं, अर्थात विलास भरी रंगीन कामनाएं शहर का रंगीन आकर्षक शोकेस तैयार करने में जुटी हुई हैं। पृष्ठ संख्या 97। रात के इस रंगीन शो के सामने जनता ओझल हो गई है। शो करने वाले मनचले लफंगों ने पेशेवर औरतों और जनता के बीच की मान सम्मान की रेखा काट कर सबको स्वस्तिक चिन्ह के रूप में एक समान देखना शुरू कर दिया है। अर्थात सूर्यास्त होते ही शहर में बेशर्मी बदहवासी का साम्राज्य छा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब जनतंत्र के नाम पर होता है। हवा में यह चमकदार गोल शब्द, जनतंत्र, हम आजाद हैं, हमारे ऊपर कोई अनुशासन नहीं, चारों ओर गूंजता दिखाई देता है। यद्यपि इस जनतंत्र की नित्य प्रति सैकड़ों बार हत्या की जाती है, फिर भी इस शब्द को वही सबसे अधिक अपने मुंह से उच्चारण करते हैं जो भेड़िए हैं। अर्थात भेड़िए के समान नेता मनुष्य ही इस जनतंत्र का नाम ले लेकर अपना नीच स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। शहर में सूर्यास्त के बाद ऐसा ही होता है अथवा होता रहा है। यह रचना राजनैतिक मंच नाटक के रूप में प्रस्तुत करके रचनाकार ने पर्दे के पीछे होने वाले कुकृत्यों की व्यंजना कराई है।